और ब्रह्म विषय गति हो जाए। इतना खाली सब्जी विचरण गति का अर्थ है। तो कर्म शब्द का मतलब ही है जहां कर्म के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो, कर्म जहां जाकर के बाधित ना करते हो। अब कर्म अपभ्रंश है, हाँ कर्म कर्म से अपभ्रंश है, असदलि विचरण है, वहां बंधन खुल जाते हैं। अब वो माया के बंधन खुलते होंगे और जो अवसाद दुख है वह मिट जाता है, ये तो देखा जा रहा है जी। हाँ हाँ, तो वो तो है ही है। जब हम अपने आप को समझ लेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं सच्चिदानंद स्वरूप ही हूं, तो हमें संसार की चीजें बाधित नहीं करेगी, है ना। अब वो उपशब्द है, वह समीप में लक्षणा से अर्थ बोधित करता है। किसके समीप में? हाँ, अपने स्वयं के समीप में बैठेंगे तो आत्मा के संविधान में जीव बैठता है। हमारे शरीर में जो आत्मा है, उस आत्मा के संविधान में अपने आप को रख करके, उसको साक्षी बना करके, जब हर कर्म हम करते हैं तो हमारा सब कर्म बंधन युक्त नहीं होता है, वह ईश्वर को अर्पित होता है। यद करोसी यदस्नासी यज्जुहोसी भुवाली स्थिति आ जाती है। तो और फिर ऐश्वर्य पीछे पीछे रहता है और वैराग्य आगे आगे रहता है, और जब वैराग्य को पीछे करते हैं, ऐश्वर्य को आगे करते हैं, तो कष्ट शुरू हो जाते हैं। तो ये जो कर्म शब्द है यह अद्भुत है। मेरा एक बार तबीयत खराब था, मैं महाराज जी के पास गया था। उस समय संस्कृत में महाराज जी से बातें हुई थी मेरी, तो उस समय महाराज जी ने मुझे, आज से 2004 की बात है, यहाँ आने से पहले, तो मुझे षडबिंदु तेल कहा था नाक में डालने के लिए, कुछ औषधियां भी दिया था। उसका परिणाम है आप जहाँ आए मैं वहां आ गया। आपका मंत्र मुझे पहले से लग गया। परिणाम यही दिखाई दे रहा है। और मुझे हमेशा उस समय की स्थिति थी कि हमेशा ये जो फोटो है महाराज जी का, ये हमेशा दिखाई दिया करता था। और गणेश जी की मूर्ति, ये दो चीजें हमें हमेशा दिखती रहती है। तो कभी कभी वो दृश्य जो है सामने, जब वहां बैठता हूँ, वहां वो गणेश जी की मूर्ति देखता हूँ, तो मुझे वो सब सारे दृश्य स्मरण होते हैं। हाँ, भगवत कृपा तो दिख ही रही है, मुझे तो अनुभव हो रहा है। तो अब भगवत कृपा में श्री संत राम पीठेशु ज्योति रूपेण यस्थितः नमस्तस्मै 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 नमो नमः दत्तात्रेय समारंभाम श्री संत रामेण विवर्धिता लक्ष्मण दास सदा वंद्याम वंदे गुरु परंपराम। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदना करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ये जो कथा चल रही है, इस कथा के त्रिवेणी में जो है स्वयं संत लोग आकर के इसको पावन कर दे रहे हैं और कथाकार लोग भी आ रहे हैं। तो कथाकार जो स्वयं कथा की मूर्ति हैं, जहां बहुत उनकी वाणी पर सिद्धि हो चुकी है एक तरह से, वो कुछ भी कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हम कुछ भी कहें तो अच्छा नहीं लगेगा, ये एक सिद्धि है। हाँ। लेकिन अब ये है कि ये घी का लड्डू है, तो घी का लड्डू थोड़ा टेढ़ा भी हो जाए तो वो खाने वाले को स्वाद तो देगा ही, जो महत्व को समझेगा। तो महाराज श्री के अनुसार मेरे ऊपर भगवत कृपा है, तो मैं अपने को धन्य समझ रहा हूं। कह रहे हैं कि संसार में जो प्राणी हैं, वो प्राणी सभी सुख चाहते हैं, कोई दुख चाहता नहीं है। लेकिन जो सत्संग है वह सबके दुखों का निवारण कर देता है। ऐसे में सत्संग के प्रभाव से पांच प्रेत थे, पांच प्रेत, हाँ हाँ हाँ, वो महाराज जी पहले बोल दे रहे, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये पांच। तो बतलाया यह जा रहा है, कथा थोड़ी सी मैं कर देता हूं। जो पांच प्रेत थे वो कौन थे और क्यों उनको प्रेतत्व की प्राप्ति हुई? यदि उनको ऐसी प्राप्ति हुई तो यदि हम ऐसा न करें इसके लिए कथा हमें शिक्षा देगी, क्योंकि हमारे शरीर में रहने वाले जो पंचभूत हैं वो बोलते नहीं हैं, लेकिन वो प्रेत साक्षात प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन्होंने कहा। किससे कहा? उन्होंने पाया कि यह अधिकारी है, भाई भाई से कुछ नहीं कहता है, क्योंकि जानता है कि ये हमारा दायाद है, पटीदार है, जैसे हम है वैसे ये है। जो अपने से ज्यादा प्रबल वाले को देखता है उससे वो कुछ मांगता है। हम अपने अध्यापक बंधुओं से कुछ नहीं मांगते हैं, वहां महाराज जी से जरूर मांगेंगे कि आपकी कृपा हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके पास तो रोज रहने वाले हैं, इनके पास जो है वो मेरे पास है ही है। यांचा मोधा मोघा बरम अधिगुणे नाद हमें लब्ध कामा, मांगना हो तो ऐसे से मांगो कि फिर मांगना न पड़े, है ना? और ऐसे से मांग के क्या करना है कि रोज मांगना पड़े उससे, अथवा वही मिल जाए जो सबको देने वाला है, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो एक ब्राह्मण थे, बड़े तपस्वी थे, संस्कृत के ग्रंथों का अभ्यास करते थे, वैष्णदेव करते थे, गायत्री का जप करते थे, निर्लोभी थे, धन नहीं था लेकिन धर्म ही उनका धन था। जैसे ब्राह्मण को होना चाहिए वो सभी लक्षण उनमें विद्यमान था। वो सोचे हमने बहुत जप तप किया, थोड़ी तीर्थ यात्रा भी कर लें, क्योंकि तीर्थ यात्रा करने से थोड़ा मनोरंजन हो जाता है, एक ही जगह बैठे बैठे आदमी उब जाता है, तो चलो थोड़ा तीर्थ यात्रा कराते हैं। आज के जमाने में तो बस है और क्या क्या सुविधा है, वायुयान से भी लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन उस जमाने में लोग पैर से तपस्या कर पैर से चल के जाते थे, पद यात्रा करते थे। कोई बद्रीनाथ जाता था तो पुनः वापस नहीं आता था, वो समाधि के लिए ही जाता था, फिर वहां जाके वो रह ही जाता था, आना कठिन था, देवभूमि है वो उत्तर की। बड़े मीठे वचन बोलते, किसी को कटु वचन नहीं बोलते, किसी की हिंसा वाणी से भी नहीं करते, अहिंसा उनका व्रत था, हमेशा योगाभ्यास में तत्पर रहते थे, स्वाध्याय का पालन करते थे। एक बार जब वो आगे चले तो देखा कि पांच ऐसे विचित्र आकार के पुरुष उनके सामने पैदा हो गए और पांचों ने उनको आगे से घेर लिया। रुको, कहां जा रहे हो? बोला महाराज, डर के मारे उनको पसीना अंदर अंदर छूट रहा था, लेकिन अपने सत्कर्म पर भरोसा था इसलिए अपने आप को संभाला। बोलो मर, आप लोग कौन हो? ने कहा कि देखो भाई, हम लोग जो है वो प्रेत हैं। बोला कहां से आया तुम लोग? कहा कि भाई हम लोगों को ये पता नहीं कि हम कहां से आए और हमें कहां जाना है, यदि ये हमको पता होता तो हमारी गति हो जाती। बोला तुम लोगों का नाम क्या है, इतना पता है? कहा हाँ, हमें पहले का नाम पर्युषित है, पांच प्रेत थे, एक पहले का नाम पर्युषित, पर्युषित को संस्कृत में बासी कहते हैं, जो भोजन बासी हो जाता है ना उसे पर्युषित कहते हैं, पर्युषितान निषिद्ध। दूसरे का नाम सूची मुख, जो सुई होती है ना सिलने वाली। तीसरे का नाम शीघ्रक, शीघ्र जाने वाला। चौथे का नाम रोधक, कर्म रोध करने वाला। अब पांचवे का नाम था लेखक, हाँ पांचवा लेखक था। अब इन पांचों का जो नाम है वह उनके गुणानुरूप ही है, यथा नाम तथा गुण। भगवान विष्णु है तो व्यापक है। तो पूछा कि ये बताओ आप पांच प्रेत महाराज, कि आप लोगों की क्या इच्छा है, हमें क्यों हैरान कर रहे हो, आपको क्या चाहिए और आप लोग क्यों प्रेत बन गए, जरा यह तो बताओ। तो प्रेतों में से एक ने कहा कि मैं हमेशा स्वादिष्ट भोजन करता था और ब्राह्मणों को बासी खिला देता था कल का बचा, तो इसलिए मुझे सांप मिल गया तो मैं प्रेतत्व को प्राप्त हुआ, इसलिए मेरा नाम जो है पर्युषित पड़ा, मतलब बासी। और एक जो मेरा साथी है दूसरा, इसने बड़ी ब्राह्मणों की हिंसा किया है ना। सूची मुख मतलब जिसके मुंह में सुई हो, मुंह से ही कष्ट दे। सूची एवं मुखे यस्य, सूची मतलब सुई, सुई से छेदते हैं दूसरे को तो कष्ट होता है, तो वो दांत से छेदन करता था, ब्राह्मणों की हिंसा करता था, इसलिए उसका नाम सूची मुख पड़ गया। वो हिंसा करने वाले का नाम सूची मुख पड़ा। और तीसरा जो शीघ्रक था, कोई ब्राह्मण उसके पास याचना करने आए, मतलब